مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 6 پر ہے، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں شامل رکھیے گا۔ انا اول تاخیر مدنی مذاکرے میں رہتے ہوئے میں علم دین حاصل کروں گا، حسب حال نیتیں کرنی ہوتی ہیں، اور اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، یہ بھی رکاوٹ ہے۔
میرا نام صبا ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے ابو بہت سارے غلط باس جاتے ہیں، تو میرا دل اتا ہے کہ میرے ابو ہر روز ایک غلط باس لائے، تو آپ میرے ابو بتا دیجیے کلر باکس کھلانے ہیں۔
پیارے پاپا جان، میرا یہ سوال ہے، میرا دوست مجھے اپنے کھلونے، میں کیا کروں کہ وہ کھلونے جب میں سو کے اٹھوں تو اس کے پاس ہی میرے پاس آ جائے۔
مدنی منی، جنہوں نے رنگ بہت پسند ہے، جن کو روز نئے نئے رنگوں کی فرمائش، رنگ باکس کی فرمائش، کلر باکس، تو یہ عادت جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ ابو کو تکلیف ہوگی، روز روز بےچارے کہاں سے پیسے اتنے لائیں گے، مہنگائی کا دور ہے۔ تو آپ کو جو ابو امی اپنی خوشی سے رنگ دے، رنگ باکس، اس کو کفایت شعاری کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے بچا بچا کے استعمال کرے۔ اس میں آپ کے امی ابو خوش ہوں گے، امی ابو خوش ہوں گے تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہوگا۔ بار بار آپ رنگ مانگتے رہیں گے، اور اگر ان کی گنجائش نہیں ہوئی تو ان کا دل ٹوٹے گا، دل دکھے گا، جو آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بچے رنگ خامخا چھیلتے رہتے ہیں اور پھر وہ دوسرا منگواتے ہیں کہ آپ دوسرا لا دو۔ تو یہ مال کو جان بوجھ کر ضائع کرنا ہوا، اب اس میں کیا حکم، اب اس میں کیا لگے؟
اس میں تھوڑا سا کمپنی کا بھی میں میٹر کروں گا۔ پینسل چھیلنے کا تو پاپا ہم سب کو تجربہ ہے، اپنے کہتے تھے پینسل کچی ہے، کچی پینسل، پکی پینسل، اپنے وہ شارپنر کو الزام دیتے تھے یا شارپنر صحیح نہیں ہے، یہ نپ توڑ دیتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بعض کمپنیاں جو کلر یا پینسل یہ بناتی ہیں، ان کے اندر جو نب ہوتی ہے، اس کی جو جس سے لکھا جاتا ہے، اس کی کوالٹی اتنی کمزور ہوتی ہوگی کہ جیسے ہی وہ اس کو شارپ کرتے ہوں گے تو وہ اندر سے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ جب ٹوٹتی ہے تو اس کی پراپر وہ کناریاں بھی نہیں بنتی، جس کی وجہ سے بار بار اس کو شارپنر کرنا پڑتا ہوگا، یوں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی بچے تو ویسے بیٹھے بیٹھے چھلتے ہی رہتے ہیں، تو دونوں چیزیں میرا خیال اگر ساتھ ہو جائیں۔
اگر بلا ضرورت چھیلتا ہے آدمی بھی، آدمی ہے نا، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے بھی کرتے ہیں اس طرح، بلا ضرورت چھیلتا ہے اور ضائع کرتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ نوک ٹوٹی ہوئی نکلی اور وہ گر پڑی, اب دوبارہ چھیلا پھر گر پڑی, تو ہو سکتا ہے پینسل کی جو اندر جو کاربن ہے وہ کمزور ہو. تو اب اس میں تو یہ ضرورتاً ایسا کر رہا ہے, اس پر تو کوئی بھی ظاہر ہے کہ وہ حکم تو لگنے سے رہا. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی نوک موٹی ہوتی ہے تو وہ ضرورتاً پتلی کرنے کے لیے اس کو چھیلتے ہیں, تو یہ بھی ضرورت ہے, اس میں بھی حرج نہیں. اور تیسرا یہ کہ صرف شغل میں اس کو چھیل چھیل کے اگر کوئی ضائع کرے تو گناہ گار ہوگا, کہ مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے.
ہو گئی بات, نگرانی شروع. کچی پکی پینسل کا کہہ رہے تھے نا, تو یہ ہمارے یہاں تو کچی پکی چل جاتی ہے. اہل پنجاب کے نزدیک وہ کچی پینسل جو ہے نا وہ اس کو پینسل کو بولتے ہیں اور پینسل پین کو بولتے ہیں, بال پین کو.
ہاں یہ پنجاب والے اس کو پینسل بولتے ہیں, ان سے پہنچے کون یار. یعنی ہم جیسا آدمی, اب تو میں تو تجربہ کار ہو گیا, پہلے ہم آدمی کنفیوز ہو, پینسل دے دو پینسل دے دو, پینسل کہاں سے لاؤ یار. پھر پتا چلا بھائی اس کو پینسل بولتے ہیں, نہیں یہ ان کی ان کا اختراع ہے, پینسل اس کو بولتے ہی نہیں ہے, تو ہے پین. ہاں مطلب ان کا اختراع ہے, یہ پینسل نہیں ہے. پینسل وہ دوسری چیز ہے, وہ لکڑی کی ہوتی ہے, اس میں کاربن ہوتی ہے. اب ہو سکتا ہے اور دھاتوں کی بھی آتی ہوگی.
یہاں جو مدنی منے اور منی مدن پڑھ رہے ہیں, تو جب ان سے مانگی جائے نا کہ پینسل لے آؤ, تو وہ کاربن والی پینسل لے کر آتے ہیں, یہ نہیں لاتے,
سمجھدار ہوتے ہیں.
پاپا اس میں یہ ہے, وہ جو بار بار بچے چھیلتے ہیں, کہ ماں باپ جہاں قیمتی چیزوں کو بچوں سے بچاتے ہیں, تو اسی طرح اگر ہر وقت ان کے سامنے شارپنر رکھا ہوگا تو وہ چھیلتے ہی رہیں گے, بار بار ماں باپ بھی نہیں سمجھا سکیں گے, تو اس لیے شارپنر ان کو موقع میل کے تحت ہی دیا جائے.
ہاں یہ ہے کہ شارپنر ان سے دور رکھا جائے, لیکن یہ بچے نا, یہ مطلب وہ ان کا ایک بلیک بورڈ تو ہوتا نہیں ہے, یہ ہر جگہ یہ لکھتے ہیں دیواروں پہ, تو اس کی نب یا نوک جو بھی ہے وہ ٹوٹے گی. اب وہ شارپنر کے لیے وہ اڑی کریں گے ماں باپ سے, ماں باپ اب کب تک ان سے قصیہ کرتے رہیں گے, تو یہ بےچارے ان کو سونپ دیتے ہوں گے. یہ کہ پیار محبت سے سمجھانے کی ہی ترکیب کی جائے, اور اب وہ کیا ہو سکتا ہے, بچہ بچہ ہوتا ہے, لیکن بچے کو فضول ضائع کرنے سے روکنے کی ابھی سے عادت ڈالی جائے. اس میں مال کی بھی بچت ہے, اعمال کی بھی بچت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. مگر منی نے جو سوال کیا ہے وہ دوسرے کی چیز ان کو مل جائے, اس میں یہ ایک سوال ہے کہ بہت ساری چیزیں جسے بچے مانگتے ہیں وہ خواہش رکھنا اور دوسرے کی چیز مل جائے, اس طرح کا اگر ذہن ہو تو ان کے حوالے سے کچھ مدنی پھول دے دیجئے.
یہ جو سوال تھا اس میں غالباً یہ تھا کہ دوست کے پاس بہت سارے کھلونے ہوتے ہیں, تو کوئی ایسی میرا جی چاہتا ہے کہ بس وہ سارا جو اس کے کھلونے نا میرے پاس آ جائے, میرے قبضے میں. تو یہ اگر معاذ اللہ کسی بچے کی ہے واقعی سوچ, یہ سوچ ہے بہت بری, ہاں بہت بری سوچ ہے, آگے جا کر یہ بہت بد رنگ لا سکتی ہے, لوٹ مار ڈکیتی چوری چھینا جھپٹی کی عادت میں مبتلا کر سکتی ہے, یہ سوچ کہ کسی کا مال مجھے بس مل جائے وہ میرے ہو جائے. تو یہ اگر مدنی منے نے یہ سوال کیا تو ایسا بیٹے نہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کسی کی چیز میرے پاس آ جائے. اول تو ایک صورت میں یہ حسد ہوتی ہے کہ دوسرے کی نعمت ضائع ہو جائے, یہ بھی حسد کی تعریف ہے. ایک حسد کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ضائع ہو کر مجھے مل جائے, دوسرے سے وہ نعمت لے لی جائے, چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور صرف یہ بھی ایک تعریف, اعلی حضرت نے یہ تعریف لکھی ہے کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے, یہ تمنا کرنا, ये हसद है, और हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। तो किसी के खिलौने देखकर, किसी की अच्छे कपड़े देखकर बच्चे का इस तरह तमन्ना करना के ये जो नेमत है इसकी छिन जाए, इससे जाया हो जाए, इससे तबाह हो जाए, ये खत्म हो जाए इससे, तो ये तमन्ना बुरी बात है, इस ये तमन्ना नहीं करनी चाहिए। और मेरे पास आ जाए ये भी तमन्ना ना की जाए, खुद ब खुद चुपके से आ जाए, इसको पता भी ना चले, ये भी तमन्नाएं बहुत बुरी तमन्नाएं हैं, इससे बचनी चाहिए। ये तमन्ना करनी चाहिए कि अल्लाह इसको और दे और मुझे भी अता करे, मुझे भी दे, अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد حسد نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، فرض علوم پر مشتمل ہے، فرض علم ہے، یہ حسد کے بارے میں جاننا ضروری احکام، تو یہ رسالہ اس پر آپ کا معاون ہوگا۔ 96
یہ پرابلم تو
چار کم 100 پیجز ہیں، اس کے 100 میں سے چار کم، مختصر سا رسالہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑھنے کا جذبہ رکھتا ہو ایک نشست میں ہی پڑھ لے اس کو، تو یہ حدیقیتاً مکتبۃ المدینہ سے لیجئے۔ اس طرح کے اور بھی مکتبۃ المدینہ والوں سے کہیے کہ اس طرح کے مضمون جیسے ریاکاری،
تکبر،
بدگمانی، یہ سب فرض علوم ہیں، تو یہ اس طرح کے رسالے مانگ کر ان سے آپ خرید لیجیے، یہ سب رسالے پڑھیے۔
عرض یہ کرنی تھی، ابھی آپ نے حسد کے موضوع پر جو کچھ مدنی پھول، مدنی منو وغیرہ کے حوالے سے عطا فرمایا، یہ تو یہاں جو ہمارے متقفین اسلامی میں بیٹھے ہوئے، کیا ان میں بھی اس طرح کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی کوئی ایسا ماحول آپس میں بن سکتا ہے کہ، یا عموماً بھائی بھائی میں حسد آ جاتا ہے، یا بھائی بہنوں میں حسد آ جاتا ہے؟
تو ہر ایک میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ اب یہاں کیا ہوتا ہوگا، کوئی تھوڑا کھاتے پیتے گھرانے کا ہوگا، ایسے ہوتے کم ہیں، کھاتے پیتے گھرانے والوں کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ ایک مہینے کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو، تو اس سے جو کم درجے کا ہوگا مالی اعتبار سے، شیطان اس میں حسد ڈالے گا، اس کے عمدہ کپڑے دیکھ کر، یا وہ اپنی کوئی عمدہ غذائیں منگواتا ہوگا، کھاتا ہوگا، تو اس سے وہ حسد پیدا ہوتا ہو، یہ اس کا امکان ہے، اور یہ ہم سب کا امتحان ہے، اگر ہم غریب ہیں اور دوسرا مالدار ہے اور وہ عمدہ لباس پہنتا ہے، عمدہ چیزیں استعمال کرتا ہے، عمدہ غذائیں کھاتا ہے، تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس سے خار بازی نہ کریں، اور یہ تمنا نہ کریں کہ یہ نعمتیں اسے چھن جائیں، نہیں، ہم برکت کی دعا کریں، یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے، اس نے کسی کو مالدار کیا، اس نے کسی کو غریب کیا، کسی کو صحت مند کیا، کسی کو کوئی بدن میں خامی اس کے رکھ دی، یہ وہ بے نیاز ہے، اور یہ اس کی حکمتیں ہیں، مشیتیں ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی کمزوری ہوتی ہے تو بعض اوقات بڑی بچت بھی ہوتی ہے، بڑے فوائد بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ حکایت ہے نا کہ وہ ایک گھر میں کچھ گدھا، کتا، مرغا یہ تھا، تو وہ جو بندہ تھا وہ بڑا صابر، شاکر اور غیر حاسد تھا، حاسد نہیں تھا، یہ کہیں گے نا اس نے زن، وہ نیک بندہ تھا اللہ کا، وہ ہر بات میں یہ تھا بس اللہ جو کرتا صحیح کرتا ہے، جس کو مالدار بنایا وہ بھی صحیح کیا، غریب بنایا تو بھی صحیح کیا، جس نے اللہ جو بھی کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، تو اس کے یہاں جو تھا مطلب وہ جو گدھا تھا وہ مر گیا، گھر والے پریشان ہوئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو گدھا مر گیا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، پھر وہ चंद रोज के बाद कुत्ता मर गया। अब रखवाली करता था, पेरा देता था, घर वाले तो बेचारे परेशान हुए, वो अल्लाह का बंदा कहता अल्लाह ने जो किया अच्छा किया, अल्लाह ने अच्छा किया, ये घर की रखवाली कौन करेगा, अल्लाह ने अच्छा किया बेशक। मुर्गा चंद रोज के बाद उसने दम तोड़ दिया, अल्लाह ने अच्छा किया, वो बांग दे के उठाता था, घर की रौनक थी, खैर अल्लाह ने अच्छा किया। अब एक दिन उस गांव पर, गांव था और गांव में फासले फासले पर घर होते हैं, हम बाजू का वो एकदम जिस तरह शहर में इमारतें जम के जुड़ी हुई और वो एक तरतीब से होती हैं, इस तरह होना जरूरी नहीं होता, हर गांव में ऐसा नहीं होता, जो दूर दूर घर थे। तो वो कोई डाकुओं की टीम ने हमला किया गांव पर, डाका मारा, तो जहां से वो आवाजें आती थी, रात का वक्त था, वो पहले लाइटिंग का दौर तो था नहीं, जगमग जगमग, तो वो जानवरों की आवाजों की समत में हो जाते थे और वो घर में उतर जाते थे, लूट मार करते थे। फिर उस घर से भी गुजर गए कि यहां तो अंधेरा था और कोई मुर्गे वगैरह की, कुत्ते की या कोई आवाजें तो थी नहीं, तो यूं ये घर जो था ये डकैती से बच गया, बाकी सारे घर लूट लिए गए जिनमें जानवर थे। तो अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसी तरह किसी को पढ़ना अच्छा आता है, मखारिज दुरुस्त मखारिज से हुरूफ अदा करता है, कुरान करीम अच्छा पढ़ता है, और किसी के हुरूफ निकलते नहीं, वो जम के भी शीन करने जाता है, शीन निकलता है उसका, तो उसको भी हसद हो सकता है उससे। इसी तरह मतलब यानी कि कोई हाफिजा अच्छा है, वो मदनी मुजाकरे में उसको बहुत कुछ याद हो जाता है और अपने पल्ले कुछ नहीं पढ़ता, तो इसका भी हसद हो सकता है ज़हीन का। तलबा में भी ये होता होगा, ज़हीन तलबा से हसद किया जाता होगा। उस हदीस शरीफ है कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूदुन, कि जिसको नेमत मिलती है उससे हसद किया जाता है। तो वारा लेके हमको हसद से बचना है, अल्लाह ताला की तकसीम पर राजी कर लेना है कि अल्लाह ने जिसको जैसा बनाया दुरुस्त बनाया, हमें जो भी दिया हम तो इसके भी अहल नहीं थे, फिर भी अता किया उसका शुक्र है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहु आलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला علي وعلي وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد। क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे को झाड़ू से मार सकता है, क्या इसे दाने निकल आते हैं?
ये शायद माएं डराने के लिए, और चीज हाथ में आते आए झाड़ू आ जाता, और झाड़ू मारेंगे तो उसकी टूट फूट नहीं होगी जिसको मारा, झाड़ू की टूट फूट हो सकती है। तो ये झाड़ू के तहफ्फुज के लिए मेरा ख्याल है वो ये बोला होगा, गड़ा होगा, ये बचपन से सुनते हैं, झाड़ू मारेंगे तो झाड़ू उगेगा कंधे में, हालांकि कभी नहीं उगा, फिर भी समझ आ जाती होगी ना बच्चों को। तो यूं झाड़ू से मारने से अगर से दाने नहीं उगते, लेकिन झाड़ू हो या कोई चीज हो या हाथ हो, एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। अच्छे बच्चे एक दूसरे को मारते नहीं है, एक दूसरे को प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मीठी बात करते हैं, नरमी करते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलहु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब।
एक इस्लामी बहन के सर में टाइफाइड बुखार की वजह से जुएं हो गई थी, अब जुएं तो खत्म हो गई हैं, मगर जुओं के बारीक अंडे अभी भी बाकी हैं। मुश्किल आसान फरमाए, बहुत परेशान है, क्या करना चाहिए उसको?
अब तो इसकी दवाएं एक से एक निकली हैं, अल्लाह ताला बेचारी को शिफा तो फरमाए और जुओं से नजात बख्शे, दवाएं तो बहुत निकली हैं इसकी, वो दवाएं इस्तेमाल करें। वो अंडे भी, इसके अंडे तो कंघे से भी निकल आते हैं, हम तो लिखे बोलते हैं, तो उसको लीक
जुएं लिखे टोले,
टोले
तीन चार चीजें होती हैं, उसमें फनी काम इस्तेमाल करते थे, छोटी सी कंगी आती है बारीक बारीक दाने, इसको हम अपनी मेमनी में फणी बोलते हैं, तो अब पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं। तो ये बच्चियों के और बच्चों के सरों में होती है काफी जुए।
रीठा एक बूटी आती है गोल गोल, ये मिल जाएगी पंसारियों से। पंसारी किसको बोलते हैं ये भी एक मसला है, पंसारी पान वाले को नहीं बोलते, पंसारी देसी दवाएं बेचने वाले को बोलते हैं। जैसे कि वो इंग्लिश दवाओं वाले को मेडिकल स्टोर बोलते हैं ना, तो इसको पंसारी की दुकान, ये देसी दवा की दुकान को बोलते हैं। तो ये देसी दवा की दुकान पर रीठा मिलता है, ये रीठे दो तीन चार इसको भिगो ले, रात भर भिगो कर रखें या इसको गर्म कर ले पानी में, गर्म करने से आसानी हो जाती है। तो गर्म करके इसमें झाग बनेगा, खुशबू भी कुदरती इसमें होती है, और इससे सर धोने से बाल भी मजबूत होंगे, शायद लंबे भी होंगे, इसके फवायदे मतलब बालों के, बालों के लिए। और ये जुएं भी इंशाल्लाह से मर जाएंगी और आपके बाल सेहतमंद हो जाएंगे। ये लेकिन अब जो ये साबुन है ना, इनके साइड इफेक्ट होते हैं, इनमें कास्टिक भी होता है और पता नहीं क्या क्या अलाव अलाव होती है, तो ये बाल टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं बाल। तो इनसे साबुन से साइड इफेक्ट होते हैं, नुकसान होते हैं आमतौर पे, लेकिन ये रीठा जो फायदेमंद है। हम बचपन में रीठे ही से नहाते थे, तो आंखों में जाता तो जलता था, आंख जलती थी, माँ पकड़ के नहलाती थी, ये याद है मेरे को छोटा था जब। तो वो हमारे यहाँ साबुन ये रीठे का, तो उन दिनों वो रीठे का दस्तूर होगा, समझे। रीठे में वो नारियल का छिलका जो होता है ना, ये भिगोगे इससे रगड़, अब तो एक से एक प्लास्टिक के और ब्रश रगड़ने के आ गए। इस तरह हम नहाते थे बचपन में, तो बाल झड़ने का कभी सुना नहीं था कि ऐसा भी कोई होता है, पता नहीं था मुझे, नहीं अब तो बाल बहुत झड़ते हैं, जिसको देखो गंज हुआ पड़ा। अब रीठा है दुश्वार काम, खैर हम भी, मैं भी साबुन ही इस्तेमाल करता हूँ, यार इतनी मेहनत कौन करे। अब तो शैम्पू, अब ये पिघला हुआ साबुन ही की कोई होगी सूरत, यार मैं साबुन इस्तेमाल करता हूँ, शैम्पू का आमतौर पर नहीं करता इस्तेमाल, मेरे पास शैम्पू नहीं है। ये तो जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो 20 किस्म की बोतलें रखते हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी, मुझे समझ भी नहीं आती इसमें है क्या क्या, यानी कुछ अपने डाल लेने तेजाब हो तो, मेहमान तो बन कहीं घरों पर तो जाना पड़ता है ना, तो साबुन पर या वो शैम्पू की बोतल का मुंह याद कर लिया मैंने, उसका मुंह जो है ना वो चोंच वाला होता है, यूं दबाते से निकलता
है। नहीं नहीं अब इसमें भी नहीं है बाबा, बहुत कुछ
इसमें भी तेजाब होता है क्या?
तेजाब नहीं होता, मतलब ये होता इत्तेफाक हमारे साथ भी, तो बस वो उस पर देखना पड़ता है थोड़ा सा गौर से कि शैम्पू लिखा हुआ है। तो बाद वक्त ऐसा हुआ था कि कुछ लगा लिया था ना, तो वो शैम्पू वाला वो मतलब वो झाग बना नहीं ना, तो फौरन मैंने बाल धो लिए, तो फिर मैंने कहा यार ये क्या अंदर में चीज, तो फिर कोई समझाया क्या हुआ, मैं कहा डरना लगे यार, आदमी लगा हुए ना पानी डाले ना पता चला तो सारे बाल लेके निकल गया वो, तो यूं अब अपने को तो ना नहीं समझ पड़ रही थी। तो ये होता है कि आजकल बाथरूम में 10 से 12 किस्म के सब अलग अलग चीजें होती है, असल में इसमें एक आदमी के लिए 12-15 चीजें हो ये जरूरी नहीं है, यानी बच्चे अलग इस्तेमाल करते होंगे तो बच्चियां अलग इस्तेमाल करती होंगे, आजकल तो मेल और फीमेल सब अलग अलग हो गए ना, हर शी मेन वीमेन, तो ये
दुनिया झुकती है झुकाने वाला चाहिए,
किड्स के लिए अलग लिखा हुआ है,
इन्होंने याद कर,
बच्चियों के लिए अलग, तो बच्चों के लिए अलग, तो आइटम जितनी वेरायटी हम बनाएंगे इतना बिकेगा। अच्छा अब ये इरशाद फरमाइए, सवाल ये आया है, क्या मुझे अपने घर में अब्बू और भाई के सामने सर पर दुपट्टा पहनना वाजिब है, और अगर कभी गलती से दुपट्टा सर से उतर जाए तो क्या मेरा भाई सबके सामने मुझे मार सकता है? प्लीज बापा मुझे इसका जवाब बता फरमाए, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखेगा। ये कोई दुखी,
अब तो खतरा ही है, अगर ये सब सुनते होंगे ना घर वाले वाला, अच्छा तूने वहां तक पहुंचा दिया,
अब ये पता नहीं कितनों के घरों की स्टोरी होगी।
अल्लाह वो दिन करे कि दुपट्टे की पाबंदियां शुरू हों। तो खैर वो भाई और बाप तो महारिम है, तो इनके सामने अगर सर के बाल जाहिर होते हैं या दुपट्टा उतरता है तो कोई हर्ज नहीं है। इस पे भाई मारता है तो उसको अब फिर ये बोलेगी तू जालिम है, मजीद मारेगा वो। तो वारा लिया कि मैं जो कहना था वो कह गया, तो भाई को नहीं मारना चाहिए, बाप को भी इस बात पर कि सिर्फ वो आपके सामने दुपट्टा उतार देती है सर से, तो नहीं मारना चाहिए, मारना जुल्म है और तौबा भी करनी होगी, जिसको मारा उससे माफी भी मांगनी पड़ेगी।
वैसे मारपीट घर में भाई बहनों में होनी भी नहीं चाहिए, और अगर भाई बहनों को शिकायत हो तो वो अपने वालिदैन से शिकायत कर दे और वालिदैन उसमें अदल और इंसाफ से काम ले। लेकिन घर में यही माहौल मेरा ख्याल होना चाहिए कि ना बहने भाई के आगे बदतमीजी करें, ना भाई बहनों के आगे हाथ चलाएं। यानी इनमें जबान और हाथ का जो इस्तेमाल है ये शरीयत के दायरे में ही रखना चाहिए।
तो भाई और बहन, बहन को भाई मारे ये तो बहुत दूर की बात है। ये कोई बाजू का रफ होता है खानदान, तो थर्ड क्लास खानदान होते हैं ना, तो इनमें इस तरह के मसाइल होते होंगे। बाकी आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि भाई बहन को बात बात पे मार धाड़ करता हो, अल्लाह बेहतर जाने। तो ये नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, और अगर दुपट्टे की तलकीन भी करनी तो नरमी से की जाए, और वो भी ना महरमों के आगे तो कंपल्सरी है। खाली दुपट्टे से भी क्या, अगर ये मुरवजा दुपट्टा है तो ये पर्दा थोड़ी है। अगर ये इतना सा दुपट्टा जो गले में लपेट लिया जाता है या सर पे रख लिया जाता है और वो चुटिया लहरा रही होती है तो ये दुपट्टा काफी नहीं है। बाल चमक रहे हो ये दुपट्टा भी काफी नहीं है, मोटी चादर हो जिससे बाल नजर भी ना आए और चमके भी नहीं, बाल ऐसे छुप जाए इसके आर पार भी नजर ना आए, ऐसा मोटा दुपट्टा हो।
वैसे घरों में ये माहौल मिलता है, पापा के वालिद साहब वगैरह इस तरह आते हैं ना, तो बच्चियां बेटियां अपने सरों को अदब की वजह से ढांप लेती हैं,
वो अलग बात है। लेकिन भाई इस पर मारे कि मेरा अदब कर, ये कैसे हुआ?
ईद का जो वक्त आता है तो इसमें नई नोटों का काफी सीजन होता है, नए नोट खरीदने के लिए ऊपर पैसे देना जायज है या नाजायज है?
गालिबन कानूनी तो इजाजत नहीं है इसकी, नए नोट इस तरह खरीदने की। अच्छा, अब अगर वो खरीदता है कोई नए नोट पुराने नोट देकर, तो ये एक मजलिस में करना होगा। ये नहीं हो सकता कि फोन पर कह दिया कि यार वो 1000 रुपए के नए नोट 10-10 वाले दे जाना, आपको फिर परसों पैसे भिजवा दूंगा, है? तो इस तरह इसमें नहीं हो सकता, एक की मजलिस में कि वो पैसे लेकर आए आपके पास नोट, या आप उसके पास पहुंचे, उसने ये आपने इसको ये रकम दी, उसने नोट दिए, या उसने नोट पहले दिए आपने उसको रकम दी पेमेंट की, ये हाथों हाथ होना जरूरी है।
जैसे आपने शायद फरमाया कि इसने फोन किया कि मैं बाद में दे जाऊंगा और पैसे भिजवा देना, यहाँ दोनों तरफ से उधार हुआ है, यहाँ इजाफा ना हो तब भी नाजायज है, बराबरी हो तब भी नाजायज है, ऐसी सूरत को बे उल काली बिल काली कहा गया है, यानी उधार के बदले उधार की बे। सिर्फ हम जिन्स में ही नहीं और चीजों में भी इसकी ममानियत की सूरतें बनती हैं, लेकिन पैसों में ज्यादा बनती हैं। दूसरी सूरत यह है कि पैसे जो हैं वो उसके साथ हैं, इजाफे के साथ हैं, एक तरफ 1000 रुपए हैं, दूसरी तरफ 1100 रुपए, 1100 रुपए देकर 1000 रुपए लेने मकसूद हैं। तो ये वो सूरत है कि जिसके लिए जरूरी है कि एक मजलिस में दोनों तरफ कब्जा हो जाए।
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्जा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
कथई ब्राउन या मेरून कलर की चादर क्यों पहनते हैं भाई?
जायज, मुबाह। अब अगर जीनत की नियत से पहनेगा दूसरे मुसलमानों की दिलजुई के लिए, हमारे यहाँ ये होता है कि जो सफेद चादर ओढ़े, कथई चादर ओढ़े मदनी माहौल में, तो ये हमारे मदनी माहौल की एक तरह की जीनत है, और ईसाई भाई इससे जो जिम्मेदारान वगैरह होते हैं ये खुश होते हैं, मैं खुश होता हूँ, मम्मी भी खुश होता हूँ, देखकर मुझे मजा आता है। तो ये दे अगर इस नीयत से ये चादरें ओढ़ेगा तो सवाब का हकदार, सवाब मिलेगा उसको।
पर्दे में पर्दे के लिए भी फायदा है,
पर्दे में पर्दे के लिए भी फायदा है बेशक,
और बहुत सारे काम इससे आसान हो जाते हैं। कभी कभी सफर में चादर नहीं होती तो ये ओढ़ने में भी काम आती है।
बिल्कुल।
अच्छा ये इरशाद फरमा दे, क्या इस्लामी बहनें अपने घर के महरिम जो इस्लामी भाई होते हैं इनकी ये जो कत्थई या वाइट चादर है इसको इस्तेमाल कर सकती है
इजाजत से? इस्तेमाल पहनने में तो अगर इस अंदाज में पहनेंगी तो
मर्द नहीं, नॉर्मल जैसे
शाबाश
इस्लामी बहनें जैसे चादरें ओढ़ती हैं अपनी, इस तरह अगर अपने घर के महरिम इस्लामी भाई या की इस तरह की ब्राउन या सफेद चादर ओढ़ लें नमाज पढ़ लें इसमें या नॉर्मली ओढ़ लें तो क्या चादरों में ये फर्क हम बयान करेंगे?
मर्द की जो मखसूस चीज हो ना कि मर्द की वो पहचान हो,
जी जी,
वो तो जायज नहीं है। अलबत्ता ऐसे दोनों में मुश्तरक चीज है जो बात चीजें होती है कि वो दोनों इस्तेमाल करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे चप्पल है कि मर्द औरत दोनों इस्तेमाल करते हैं और रवाज हो इसका तो उसमें भी हर्ज नहीं है। अगर है मखसूस मर्दों के लिए वो चप्पल तो अब जो औरत है वो चप्पल पहनकर इस्तिंजा खाने में भी नहीं जा सकती। इसी तरह औरत के चप्पल रखे हुए जनाना जो मखसूस है जनाना वो मर्द पहनकर इस्तिंजा खाने में भी नहीं जा सकता। अब रही ये चादर है, मैंने यह कह रहा कि दोनों में जो मुश्तरक हो कंबाइंड हो जो चीज दोनों में उर्फ हो पहनने का और मर्द की मखसूस पहचान ना हो या औरत की मखसूस पहचान ना हो कि ये इनके लिए, तो वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं इस अंदाज में तो मर्द की मुशाबहत।
इस अंदाज में नहीं बाबा, जैसे घर में चादरें ओढ़ती हैं दुपट्टे ओढ़ती हैं इस्लामी बहनें, जैसे कि अभी ब्राउन चादर पड़ी हुई है किसी की मतलब वालिद की ब्राउन चादर पड़ी हुई है और बेटी ने वो ब्राउन चादर ली और नमाज पढ़नी शुरू कर दी, भाई की सफेद चादर पड़ी है तो बहन ने ली और वो बाल भी नहीं चमक रहे उससे,
मोटी है
और उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, या आम तौर पर पर्दे के लिए जैसे कि दुपट्टे और चादरें इस्तेमाल करती हैं इस्लामी बहनें, तो घर में पड़ी हुई है चादरें, भाई की भी है वालिद की भी है और शोहर की भी है, तो अगर बीवी बहन या माँ इस तरह मतलब की चादरें इस्तेमाल कर लें घर के अंदर तो क्या इसमें, क्योंकि इनके फिर अलग लो फिर उनके लिए अलग लो।
दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो ये है कि एक चीज ऐसी है वो औरत अगर अपने तरीके से पहनेगी तो मर्द की मुशाबत नहीं आएगी। अब ये चादर हमने अपने तरीके से पहनी हुई, जैसे अमीर अहले सुन्नत ने ब्राउन चादर जिस अंदाज से ली हुई है ये मर्दों का अंदाज है। अब औरत व्हाइट चादर को उस अंदाज से पहने जिस तरह वो औरतें पहना करती हैं, यानी पूरा सीने पे से लेके, तो मुमकिन है कि वो मर्दों के मुशाबे ना लगे। तो असल नतीजे पर रिजल्ट क्या आता है, जब औरत ऐसी चादर पहनेगी तो रिजल्ट क्या आएगा, उसे क्या कहा जाएगा?
इसमें तो ये समझेंगे नहीं
भाई, यही व्हाइट चादर औरतों
के ये कि जायज है ये कहेंगे तो समझ आएगी।
बाबा औरतों की नमाज की व्हाइट चादर ही होती है,
जी जी
ठीक है ना, जो अपनी चादरें ओढ़ती भी हैं घर में लेकर पहनती भी हैं।
अब एक साइज बड़ी होती है हमारी चादरों से,
हाँ लेकिन चलो ठीक है, लेकिन अब मिसाल के तौर पर अब आपकी चादर है और कोई मोहब्बत या अकीदत में चलो या बापा की चादर है और बेटी या इस तरह को घर की सी खवातीन जो होती हैं इस्लामी बहनें होती हैं वो ओढ़कर उसमें नमाज पढ़ लेती जिस तरह वो अपनी चादर ओढ़ती थी इस तरह ये ओढ़ ली, साइज में भी कोई फर्क नहीं नजर आया, बजाय ब्राउन पहन ली, व्हाइट ही तो जरूरी नहीं है नमाज के लिए पहने, तो इसमें तो वो औरत तो औरत ही लगेगी ना, मर्द वाला तो अंदाज उसका है ही नहीं। और जो मुफ्ती साहब के कहने के मुताबिक अगर उसके पहनने का अंदाज औरतों वाला ही है मर्दों की नकल नहीं कर रही तो फिर मुफ्ती साहब कहेंगे कि ये जायज है।
कपड़ा भी ऐसा हो कि जो वाक्यतन मुश्तरक हो, ऐसा नहीं है कि वो मर्दों के साथ ही खास हो। अब हमारी चादरें ऐसी हैं ये इसमें कोई ऐसी अलामत तो है नहीं, ब्राउन चादर भी अगर पहन लेती औरत उस हैयत के साथ तो वो लगती नहीं है कि वो मर्दाना चादर उसने पहनी है।
जज़ाकअल्लाह। नमाज में वो चादर ब्राउन ओढ़ लेगी औरत जो हमारी चादरें हैं ब्राउन, तो उसकी नमाज में कोई कराहियत नहीं आई और वो जायज है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد।
एक मसले का हल अता फरमा दे, बहुत पुराना है, कहते एक दूसरे का कंघा इस्तेमाल करने से लड़ाई झगड़े होते हैं।
झगड़े का तो सुना ही सुना जैसा आपने सुना, तो घरों में तो ऐसा बारह होता होगा, एक ही कंघे में सब इस्तेमाल करते भी होंगे, और अगर ये सब अपना अपना भी कंघा इस्तेमाल करते तब भी लड़ाइयां तो घरों में होती है ना, चाकिया घरेलू। अल्लाह बेहतर जाने, ये ऐसे ही अवामी रोमर लगता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا فرزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ